I don't understand about one third of this वसीयत. What about the rest of the part? Who will get the rest of the part then? जी वही तो, टू थर्ड जो है मैंने कहा ना वारसों का हिस्सा है, आप सिर्फ वन थर्ड में से वसीयत कर सकते हैं. वो भी अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना कम माल है कि जिसमें अब यानी अगर आपने वसीयत की, जाहिर है किसी गैर वारिस को ही करेंगे ना, तो वारसों के लिए तो और भी कमी हो जाएगी, और भी कम हो जाएंगी, उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं. अब मसलन आपके पास एक घर ही और कुछ भी नहीं, चार पांच बच्चे हैं. अब वो चार पांच बच्चे के लिए वो घर भी इतना मतलब काफी नहीं है, इतनी कम आप छोड़ के जा रहे हैं. अब उसमें से भी आप वन थर्ड की वसीयत कर देंगे तो फिर बताएं उनके लिए क्या रह जाएगा. तो ऐसे हालात में तो बेहतर है कि वसीयत ना की जाए, फिर ऐसे ही इंसान छोड़ दे, वो फिर इंशाल्लाह ताला उनको जो सारा इन टोटल है वो ही सारा मिल जाएगा. वसीयत यानी अगर करनी ही है किसी ने तो फिर वो वन थर्ड से करेगा, बाकी टू थर्ड तो है ही वारसों का. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. इज इट सेम फॉर मदर टू गिव हर मनी इक्वल टू हर चिल्ड्रन? बिकॉज आई सॉ सम टाइम मदर गिव द होल मनी टू वन चाइल्ड. वन लेडी गॉट 12 लाख फ्रॉम हस्बैंड प्रॉपर्टी एंड शी गिव द होल अमाउंट टू वन चाइल्ड. अच्छा वो क्या फौत होने वक्त या फिर क्या जब वैसे जिंदा थी उस वक्त दिया, ये भी क्लियर कर देना. क्योंकि अगर हम किसी, शी इज अलाइव, अलाइव है तो सबको इक्वल देंगी, एक चाइल्ड को नहीं दे सकती. लेकिन अगर कोई फौत होने लगे, फौत हो गया तो उसके बाद फिर तो विरासत के अल्लाह ताला ने खुद ही रखी है ना जो सिलसिले. अगर हम किसी को जमानत दें और हमें पता हो कि वो गैर शरई काम में जेल गया है और वो किसी ऐसे कंट्री में हो जहाँ लॉ स्ट्रिक्ट हो, तो ऐसे को भी छुड़ाने पर हमें अल्लाह की तरफ से अजर मिलेगा? नहीं, अगर वो मुजरिम है तो तब थोड़ी मिलेगा अजर. भाई मुजरिम को तो नहीं आपने छुड़ाना ना, अगर रिश्तेदार भी हो, लेकिन अगर उसको कोई जुर्म की सजा दी जा रही है और उसमें वो जेल में है तो फिर नहीं. वॉट इफ समवन किल्स बाय एक्सीडेंट, देन इज द रूल सेम? नहीं, फिर रूल सेम नहीं है, फिर वो देखा जाएंगे, वो देखा जाएगा क्या एक्सीडेंट, क्या वो जानबूझ के कुछ किसी ने किया या एक्सीडेंटली हो गया, और फिर किस तरह से है वो पहले उसकी तहकीक होगी. फिर उसके बाद कत्ल हुआ तो वो कत्ल तो है, लेकिन देखें कत्ल भी हर एक, एक कत्ल एक जैसे नहीं होते ना, कोई कत्ल ऐसे भी होते हैं कि जो किसी ने इंटेंशनल नहीं किया, वो ऐसे एक्सीडेंट होगा तो उसको जानता भी नहीं है, तो उसके अहकाम फिर डिफरेंट हो सकते हैं. कैन समबडी स्पेंड देयर वसीयत ऑन वन चाइल्ड एजुकेशन? विरासत ऑन वन चाइल्ड एजुकेशन यानी विरासत में, यानी क्या मतलब, उसको विरासत में हिस्सा मिला है तो वो एक चाइल्ड की एजुकेशन पे लगाता है. अगर तो मसलन किसी को मिलता है विरासत के अंदर, उसको अपने बाप फौत हुए तो उसको 5 लाख मिला, उसने अपने बच्ची की एजुकेशन में लगा दी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं. स्पेंड देयर विरासत ऑन वन चाइल्ड, विरासत में समझी नहीं, विरासत तो मरने के बाद होती है, जिंदगी में तो होती ही नहीं विरासत. ठीक है, उसको विरासत नहीं कह सकते, जो कोई जिंदा है तो ये उसकी विरासत है, ये नहीं, मरने के बाद ही विरासत होती है. तो ये आप बताएं कि क्या कहना चाह रही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, एवरी डे लाइफ के बहुत से सवाल के जवाब मिल गए. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल. कुरान तो हमें रोज जवाब देता है, हर दफा जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें जवाब मिलते हैं. वॉट इफ फादर गेव अवे टू सन वेन ही इज अलाइव, सो विल देयर बी कंसिडर इन गिविंग अवे? नहीं, जिंदगी के अंदर तो आप दे सकते हैं तोहफा तन अपने बच्चों को, वो विरासत नहीं होती. विरासत मैंने बताया ना मरने के बाद ही होती है. जिंदगी में अगर दे रहे हैं तो सब बच्चों के साथ इक्वेलिटी करनी चाहिए, ये नहीं फिर कि एक ही बच्चे के ऊपर सारा स्पेंड करते जाए. ठीक है. शीरीन लाइट वाला, आवर क्लास स्टूडेंट पास्ट अवे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अल्लाह ताला उन्हें इस इल्म के सफर के दौरान उनकी वफात हुई है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जन्नत का रास्ता उनके लिए अल्लाह ताला फूलों भरा कर दे, आसान कर दे, और अल्लाह ताला उनकी कब्र को अब कुरान के नूर से ही मुनव्वर कर दे, जिस कुरान के साथ वो जुड़ी रहीं जिंदगी भर. अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलों को आसान फरमा दे. हमारी स्टूडेंट शफक हैं, उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. आप उनके लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी वालदा की मग़फ़रत फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बना दे, और उनको अगले जहान में आसानियाँ फरमाए. अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको भी जगह अता फरमाए. इफ़ समवन अडॉप्टेड अ चाइल्ड एंड दे हैव नो चाइल्ड ऑफ देयर ओन, देन वॉट इज द रूलिंग फॉर द वसीयत? वसीयत में बेशक वो अपने उस अडॉप्टेड चाइल्ड को दे दें, लेकिन विरासत में तो उसका हिस्सा नहीं होगा. प्लीज प्रे फॉर नैयत दुरानी, शी हैड हर सर्जरी लास्ट वीक। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अजला अता फरमाए और सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। डू वी हैव टू गिव इक्वली वाइल लिविंग टू ऑल देयर चिल्ड्रेन? हाँ जी बिल्कुल, अगर आप जिंदा हैं और आप बच्चों को देना चाहते हैं तो जैसे आप, मैं एक अपने बच्चे को तो इतना सारा कुछ दे दूँ और दूसरे बच्चों को ना दूँ तो ये नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है, ठीक है। तब आपको सबको देना है, ये चीज़ लेकर आती हैं तो सबके लिए लेकर आए। ऐसे नहीं है कि एक बच्चे को ज़्यादा लाड पे, जैसे कुछ घरों में होता है एक बच्चे को तो इतना लाड पे और उसकी 100 खताएं भी माफ़ हैं, दूसरों को पर हर वक्त डंडा चल रहा है, तो ये नहीं। देर इज़ अ सिस्टर हु कम्स टू मॉस्क एंड वेट्स फॉर हर चिल्ड्रन हु रीड कुरान ओवर देयर वाइल शी सिट्स इन मस्जिद। शी टॉक्स कंटिन्यूसली, ऑफन शी हैज़ लाउड वॉइस ऑल्सो। शी टॉक्स हाउ शी रेजेज हर गर्ल्स इस्लामिक वे एंड गोज ऑन एंड ऑन विद अदर वुमेन हु सिट देयर। शी टॉक्स सो मच दैट इट इज़ हार्ड फॉर मी टू सिट देयर इन पीस। हाउ कैन आई टेल हर दैट दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू कीप टॉकिंग लाउडली? हाँ जी, अच्छा आप ऐसा करें कि आप कहें, एक दफ़ा आप ये सारी औरतों को कहें कि अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला आप एक टॉक देंगी, ठीक है। आप माशाल्लाह इतना सीख रही हैं तो आप एक टॉक दें बेकार बोलने पे, बेजा बोलने पे और मस्जिद के एहतराम पे। तो नेक्स्ट टाइम आप टॉक देंगी तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। अगर कोई अलाइव अपनी विरासत दे रहा हो तो वो फिर भी शरई तरीके इस्तेमाल करेगा, ये सबको इक्वल भी दे सकता है, यानी भोजन का। अच्छा देखें, ये तो ऐसे ही है, मतलब विरासत का जो आप लोग सारे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में देने का, तो ये तो ऐसे ही है कि हम कहेंगे मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपना जनाजा कर लूं और फिर अपनी ज़िंदगी में ही अपना जनाजा पढ़ा लूं तो उसका क्या है। तो विरासत मेरी बहनों होती है जब इंसान मर जाता है। आप अपनी विरासत अपनी ज़िंदगी में तकसीम कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? इंसान खुद ज़िंदा बैठा हुआ है तो वो अपनी विरासत तकसीम करने बैठ गए। हाँ ये हो सकता है कि जो कुछ उसके पास है वो अपनी ज़िंदगी में जो देना चाहता है तो अब जब वो देगा तो वो अब विरासत का कानून तो उस पर नहीं लगा सकता ना। विरासत का कानून तो विरासत पे लगेगा ना, खुद सोचे किस पे लगेगा विरासत का कानून? जो विरासत है उस पर लगेगा ना, ये तो अभी विरासत बनी ही नहीं। विरासत तब बनेगी जब ये बंदा दुनिया से चला जाएगा। अब जब वो दुनिया में मौजूद है, अभी जिंदा है, तो अभी ये विरासत नहीं है। अब हाँ वो तोहफतन दे सकता है, अब जिसको भी देना है उसने, चाहे कहीं और दे लेकिन अपने बच्चों को भी दे, यानी इक्वली दे। फिर नहीं है कि लड़के का ये दो हिस्से और लड़की का एक हिस्सा, फिर वो विरासत के कवानीन तो ज़ाहिर है उस पर किस तरह से लागू होंगे जबकि अभी ये विरासत है ही नहीं। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी ना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर उस्ताज़ा फॉर ब्यूटीफुल। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह ताला की रहमत है हम सब पर कि अल्लाह ताला ने ये शरीयतें रखी हैं, वरना अगर हम अपनी मर्जी के हिसाब से वसीयत करने लगते हैं तो भाई बहनों में फसाद, दुश्मनी और नफरतें ही रह जाती। बिल्कुल, मेरा एक सवाल है उस्ताज़ा कि अगर वारिस को जो हिस्सा मिला वसीयत में, नहीं वारिस को वसीयत में हिस्सा नहीं मिलेगा, वारिस को विरासत में मिलेगा, वसीयत वारिस के लिए है ही नहीं, ठीक है। अगर वो दूसरे भाई या बहन को देना चाहे जो ज़रूरतमंद है तो क्या हम उनको दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये पूछ रही हैं अगर आपको विरासत में हिस्सा मिला, अच्छा अब वो आपकी चीज़ हो गई, अब आप जिसको मर्जी दें, चाहे भाई बहनों को दें चाहे जो मर्जी। अब किसी मिसलन आपको विरासत में अब मिल गई है ना, वो अब आपकी प्रॉपर्टी है, अब आप उसको यानी यतीम खाने में दें, ज़रूरतमंद बहन भाई को दें, किसी को दें। लेकिन उससे पहले, आपको मिलने से पहले नहीं ये हो सकता कि जो है ना अभी आपको मिली है नहीं और पहले ही वो जो चूंकि वो ज़रूरतमंद है इसलिए उनको दे दी जाए और इनको नहीं देनी, ये फैसले खुद से नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जो इनसे मुकर्रर कर दिए हैं वो कर दिए। अब आपका एहसान होगा, आपकी सिला रहमी होगी, आपकी अच्छाई होगी कि आप अपने जो भी ज़रूरतमंद बहनों में भाई में कोई है और आप उसको देना चाहती हैं तो 100 दफ़ा दें। कैन वी गिव इक्वल टू डॉटर एंड सन इन अ विल? नो, आप विल इस बारे में लिख ही नहीं सकती कि आप अपनी डॉटर और सन के बारे में विल लिखे। मैं यही तो बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने हिस्से मुकरर कर दिए हैं, अब आपने डॉटर सन के बारे में वसीयत करनी ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जब बता दिया तो आप उसके ऑन टॉप ऑफ इट करना चाहेंगे क्या? कि अल्लाह का तो कानून है, लेकिन मैं खुद लिखना चाहती हूँ कि मेरी डॉटर को इतना मिले, सन को इतना मिले। कईयों का एक बेटा एक बेटी होती है, कहते हैं दोनों को बराबर मिल जाए, क्योंकि हम बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं रखते, हमारी बेटी भी उतनी अजीज है। ओ भाई, आप कैसे कर सकते हैं? जब अल्लाह ताला ने हिस्सा मुकरर कर दिया तो आप कर ही नहीं सकते। समझ आ गई बात? आपने ठीक कहा था, सब्र के साथ पढ़ते रहें तो सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि अभी दूसरे पारे में आपको ये बात रियलाइज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आप ये कह रही हैं, बाकी लोग भी सब्र के साथ पढ़ते रहेंगे तो उनको भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जल्दी ना करें, बेसब्री से ना कोई फायदा नहीं है। क्या औरत को भी वसीयत करनी चाहिए? क्या उस पर भी विरासत के अहकामात हैं? हाँ, अगर औरत, जाहिर है, अगर वो मालदार है, उसका इतना माल है, तो वो अपने माल में से वसीयत कर सकती है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, मसलन औरत के पास इतना कुछ खास है ही नहीं, सिवाय मिसाल के तौर पे जेवर वेवर है, तो अब उसको छोड़ जाए ना वारसों के लिए, बजाय अब उसके अंदर भी 1/3 की वसीयत कर दी, वो भी आपने किसी और को दे दिया 1/3 निकाल के, तो आपके वारसों को क्या मिलेगा? वो वारिस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वारिस पीछे से यानी गनी रहे वो ज्यादा बेहतर है इससे कि जो है ना आप उनके लिए छोड़ के जाएं, ज्यादा बेहतर है इससे कि आप किसी और के लिए 1/3 की जो वसीयत आपने की है वो आप कर दें और आपके वारिस जो है ना फिर मांगते फिर इन लोगों से। ठीक है, अच्छा। फॉर माई ब्रदर सिकनेस कैंसर, अल्लाह ताला आपके भाई को शिफा कामना अजला फरमाए। सारा टाइम वॉइस बहुत लो थी, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि इसका कुछ किया जाए। आई ऑलवेज यूज माई स्पीकर्स, उस तरह कांट हियर अ वर्ड विदाउट स्पीकर्स। अच्छा, इंशाल्लाह ताला देखिए, नेक्स्ट टाइम अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आसानियाँ करें। वॉट इफ वन चाइल्ड अर्न्स एंड फादर यूजेस हिज मनी टू गेट इस्टेब्लिश्ड, कैन फादर गिव दिस चाइल्ड एट बिट मोर देन अदर कंसिडरिंग ही अर्न एंड हेल्प आउट इन द हाउस। अच्छा, फादर यानी अपनी जिंदगी में गिव हिज चाइल्ड अ बिट मोर देन। हाँ, अगर ऐसा कुछ मामला है कि बच्चे ने अर्न किया और फादर के ऊपर स्पेंड किया और वो इसको कर्जे के तौर पे समझता है और उसको ही देना चाहता है, हालांकि अगर उसने बाप पे स्पेंड किया तो उसने अपनी नेकी कमाई, लेकिन अगर बाप ये समझता है तो फिर उसके ऊपर खर्च कर सकता है। द अडॉप्टेड चाइल्ड विल ओनली गेट फ्रॉम 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ, अगर वसीयत करनी है तो उस वसीयत में से उसके नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी गिवन इन चैरिटी एज दे हैव नो चाइल्ड ऑफ देयर। नो 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 नो, ये किसने आपको कहा? नहीं, अगर औलाद नहीं है तो और लोग बनते हैं, मसलन अगर उनके पेरेंट्स जिंदा हैं तो वो वारिस बनेंगे और बहन भाई वारिस बनेंगे। हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आप इसकी ना फिक्र करें कि उसका क्या बनेगा जिसके मसलन बच्चे भी ना हो और उसके माँ बाप भी ना हो। या दैट्स व्हाट आई मेंट, नॉट विरासत बट जायदाद। हाँ जी, बाद में झगड़े होते हैं तो जिंदगी में क्या ऐसे करें कि बाद में झगड़े ना हो? बाद में झगड़े इसलिए मेरी बहन होते हैं कि बाद में हम अल्लाह ताला के जो अहकाम है ना उनको जानते हैं और ना ही उनके मुताबिक अमल करते हैं, इसलिए झगड़े होते हैं। तो अब वालदेन की कोशिश होती है हम भाई अपनी जिंदगी में ही दे जाए ताकि झगड़े ना हो। वो अगर अल्लाह के कानून को मानते हो फिर आपको तो यही चाहिए कि आपको तो फिक्र ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सारी तकसीम लिख दी है, अपनी किताब में लिख दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दी। और अब क्या होगा, ये बंदा दुनिया से गया है, उसके पीछे से एग्जैक्टली वैसे तकसीम हो जाएगी जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो उसमें तो झगड़ना बिल्कुल ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना किसी के साथ ना इंसाफी हुई, इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म था। अगर किसी को आधा मिला है तो वो भी अल्लाह का हुक्म है, किसी को 8वां हिस्सा मिला है तो वो भी अल्लाह का हुक्म है, तो उसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं होनी चाहिए। वो ये झगड़े तभी होते हैं कि जब छीना झपटियां शुरू हो जाती हैं और इल्जाम तराशियां शुरू हो जाती हैं, वो खा गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वो कर दिया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं ना चलते। साजा, इज देयर एनी लेक्चर ऑन माय वेबसाइट अबाउट मस्जिद के आदाब? जी, मस्जिद के आदाब देखें, हाँ, एक्सेसिव टॉकिंग के बारे में तो है, मेरे ख्याल में जुबान के जो ऐसा कुछ होगा, जुबान के जो वो है, लेकिन मस्जिद के आदाब का मैंने आपको लास्ट पारे में बताया था जहाँ पे हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ रहे थे, और जहाँ पे मस्जिदों को वीरान करने की बात आई थी वहाँ पे। इफ फादर इज सेम मदर इज डेथ, देन हाउ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो फादर की अगर डेथ हो जाती है, उनको वारसों को तो वैसे ही मिलेगा, और उनकी बीवी को, वो उनकी बीवी है, किसी की स्टेप मदर हो सकती है औलाद की, लेकिन हस्बैंड की तो नहीं ना कुछ, उसकी तो बीवी ही है, वो तो उसको वही हिस्सा मिलेगा जैसे एक बीवी का हिस्सा मुकर्रर है। प्लीज प्रे फॉर माई सन, ही नीड इट। अल्लाह ताला आपके बेटे का जो भी मसला है, अल्लाह ताला मसला हल फरमाए। अल्लाह ताला तमाम लोगों की औलादों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। क्या औरत के का ये कहना कि मैं अपनी विरासत में हक छोड़ती हूँ, तो क्या ये ठीक है? क्या मतलब विरासत में अपना हक छोड़ देती हूँ? कोई औरत कहे कि मैंने अपना हक छोड़ दिया, सबसे पहला तो ये सवाल है कि क्या उसको हक मिल रहा था? तो फिर छोड़िए, तो अगर मिल ही नहीं रहा था और वो ऐसे ही कह दे कि मैं छोड़ती हूँ, तो अल्लाह ताला को तो पता है कि ये क्यों कह रही है कि मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि उसको मिलना था ही नहीं, तो उसने ऐसे ही कह दिया। अगर कोई ब्रदर हो तो वो अपनी बहनों को विरासत को ना तकसीम के को ना तकसीम के नाम ना ले ना तकसीम करने का नाम ले, फिर क्या करें? ये इसलिए कि किसी को ना मिले, तो भाई वही गुनाहगार है जो नहीं तकसीम होने दे रहा हो, और क्या है ये? तो देखिए अल्लाह के अहकामात है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अगर किसी को विरासत में इंसाफ से हिस्सा नहीं दिया गया, अब क्या औलाद को माफ कर देने से उनके गुनाह में कुछ कमी होगी? माफ कर दें हम हमारा हक, और रवाय मगफिरत भी करें। कर दें वो तो आपकी मर्जी है, और ज़ाहिर हक ही नहीं मिला, तो अब जिसको ना कुछ मिले, जैसे मसलन जो अपना हक ले ही ना सकता हो, वो कह दे कि मैंने माफ़ कर दिया, तो वो तो कोई माफ़ी नहीं होती ना। अब आपको आपका हक मिला हो, उसके बाद आप कहें कि हमने अपना हक माफ़ कर दिया, तो वो कोई बात है। जैसे कोई बदला ही ना ले सकता हो, वो कहे कि मैंने माफ़ कर दिया दूसरे को, तो तुम्हारा माफ़ करना क्या, तुम बदला तो ले ही नहीं सकते थे। तो बात ये है कि देखें, वो जो उन्होंने ना इंसाफी की है, वो अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ा है। मैंने आपको अभी हदीस बताई है ना, उसमें आपके माफ करने ना करने की इतना सवाल, उससे ज्यादा ये सवाल है कि अल्लाह का हुक्म टूटा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद विरासत के हिस्से तकसीम कर दिए, किसी और ने नहीं किया, अल्लाह ताला ने खुद मुकरर किया, तो अल्लाह के हुक्म को तोड़ना है। हाँ, वो एक अलग बात है कि दूसरा गुनाह जो है कि किसी की हक तलफी करना, हक मारना, तो वो आपने छोड़ दिया, वो एक एक अलग गुनाह था, वो अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर दे कि आपने अपना हक छोड़ दिया। दुआए मगफिरत तो करनी ही चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत ब्यूटीफुल एंड इन्फॉर्मेटिव तफसीर ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, या की फॉर सच डिटेल, अल्हम्दुलिल्लाह। मिसबा खान्स फादर पास्ट अवे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके वालिद की मगफिरत फरमाए, और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और मिसबा को उनके लिए सदकाए जारिया बना दे। अगर कोई बहन अपने भाइयों को लिख दे कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, यानी उस शहर से, और उसको अपना हिस्सा नहीं चाहिए, तो क्या उसका हिस्सा उसको मिलेगा बाद में? वो क्यों लिख रही है कि मैं मुझे नहीं चाहिए? तो अल्लाह ताला ने उसका हिस्सा उसके लिए लिखा है, वो कोई भाई उसके ऊपर कोई एहसान तो नहीं कर रहे। आए, और फिर क्या बाद में वो लेना चाहती है हिस्सा, उसको मिलेगा बाद में? मतलब ये नहीं समझ रहे। आई वर्क एंड माई हस्बैंड टू, बट द मनी गोज इन कॉमन पूल, नाउ हाउ डू आई डू द वसीयत? आई डोंट नो व्हाट इज माइन एंड व्हाट इज माई हस्बैंड। तो इस तरह से तो आपने मतलब, लेकिन अगर अलग रखें तो वो ज्यादा अच्छा है, कि आप तो जाहिर सी बात है वो मिला जुलाई है, अब उसमें आप कैसे वसीयत करेंगे? उसमें तो जाहिर नहीं हो सकती ना इस तरह से। हाँ, तो अगर आपको कुछ अपना कुछ अंदाजा है तो फिर आप उसमें से कर सकती हैं, और वसीयत को आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में, अगर आपके जहन में कुछ और बात आए कि नहीं मैंने उसको नहीं, वहाँ नहीं देना, मैंने कहीं और जगह देना है, तो फिर आप चेंज भी कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई कुरान हदीस नहीं कि जो कभी नहीं चेंज हो सकता। अच्छा, वेरी लो थी आज आवाज़। مصباح نورین خان فادر پاسٹ ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، قبر کو ان کی کشادہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے منور فرمائے. بٹ اف پرابلمز اکر اباؤٹ دا پراپرٹی آفٹر دا ڈیتھ، واٹ اسٹیپس شوڈ بی ڈو؟ اسٹیپس یہی کرنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات لوگوں کو بتانے چاہیے، ان کو عام کرنا چاہیے، کہ ہم لوگ اتنے ان سے ناواقف ہیں، معذرت کے ساتھ ہمارے لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ وراثت کے کوئی احکامات ہیں. آگے آگے تو آپ اور ڈیٹیل پڑھیں گے، بلکہ پورے پورے رکوع اس بارے میں پڑھیں گے، اور آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے وراثت کی تقسیم اور کیسے ہوتی ہے. آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ 70 سال کوئی نیکی کے کام کرتا ہے اور اینڈ میں آ کے وہ اس میں ڈنڈی مار دیتا ہے، اپنی وراثت کی چیزوں میں، وصیت میں. تو وہاں پہ جا کے دیکھو اللہ کے ہاں اس کا خاتمہ کس پہ ہوا، اینڈ کا کام کیا تھا؟ گناہ کا کام، اللہ کی نافرمانی کا کام، اس کی وجہ سے جہنمی ہو گئے. اللہ اکبر. استاذہ، اگر آپ کے پاس جو منی ہے وہ آپ کی ہسبینڈ کی اپنی انکم نہیں ہے، لیکن بینک اکاؤنٹ ہسبینڈ اینڈ وائف بوتھ کے نام ہے، دین آپ کے ہسبینڈ کی اپنی انکم نہیں، ظاہر ہے پھر عورت کی انکم ہے نا، بینک اکاؤنٹ چاہے بوتھ کے بھی نام ہو لیکن دونوں کو پتا تو ہے نا کہ یہ عورت کی انکم ہے، تو وہ اس میں سے وہ پھر کر سکتی ہے. If any house is in daughter in law's name, can she demand the rent of the house if the house is given on rent? ہاں، اگر ڈاٹر ان لا کے نام پہ ہے، کس کو اس نے اگر رینٹ پہ دیتی ہے تو ظاہر ہی بات ہے اگر اس کا گھر ہے اس کے نام پہ تو تبھی ہوگا جب اس کا گھر ہوگا، تو وہ چاہے رینٹ پہ دے چاہے بیچے. زبان کی آفر. اچھا، جزاک اللہ خیر کثیرہ، آپ نے بتا دیا وراثت کے گھر میں پوتا پوتی کو حق ہے، ایون باپ زندہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا حق اپنے بہن بھائی کے نام کرتا ہوں، اور ہز بردر اینڈ سسٹر آر ویری ویل آف ان دس سچویشن، واٹ کین دے ڈو؟ ڈو دا گرینڈ چلڈرن ہیو دیئر رائٹس آف وراثت اور ناٹ؟ ہے تو نہیں رائٹ، لیکن کسی کو بھی یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے وارثوں کو، ابھی میں نے یہی کیا بتایا، اپنے وارثوں کو غنی چھوڑنا وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کے وارث بھیک مانگتے پھریں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. تو اپنے وارثوں کے لیے، یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ میرے پیچھے سے ایسے نہ ہو جائیں کہ وہ محتاج ہوتے پھریں. وہ جو بہن بھائی ہیں ان کو تو اپنا حصہ مل جائے گا، میرے وارث میرا حصہ پائیں گے. بہن بھائیوں کو ظاہر ہے ان کے ماں باپ سے مل رہا ہوگا، تو ان کو وہاں سے بھی ملا، اب آپ بھی ان کو دے رہے ہیں، تو آپ کے اپنے وارثوں کے لیے کیا رہ گیا؟ دیکھیں یہاں پہ بھی جو آیت میں بھی بات آئی، بے شک منسوخ ہو گئی، یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن دیکھیں اس میں بھی کیا بات ہے، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک ہی طرف کو جھک جاؤ. کلیئرلی ایکسپلین اباؤٹ وراثت بٹ پیپل گوئنگ ٹو ہوائے نفس. بالکل صحیح بات ہے، اب وہ ان کو سننا ہی نہیں ہے جن کو، تو پھر ان کو منمانیاں کرنی ہے کہ ہمیں جس کا ہمیں دل چاہتا ہے ہم اس کو دیں، تو پھر آپ بتائیں پھر انسان کیا کرے. دوبارہ کیس پر مدر، ہاں جی ہو گئی، اس آواز نہیں آ رہی. باقیوں کو بھی نہیں آ رہی. ڈیورنگ آر لائف کین وی گیو آور پراپرٹی ایکول ٹو آل سن؟ ہاں جی دے سکتے ہیں، زندگی میں اس کو نہ پتا ہو کہ بعد میں چاہیے یا نہیں، تو پھر ایسے فیصلے بھی سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے نا، پہلے معاف نہیں کر دینا چاہیے. جب ملے گی تو پھر ہی معافی کا سوال آتا ہے نا، ملی نہیں کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہے، معاف پہلے ہم کر دیں. ہی ایکسپائرڈ اینڈ پھر حصے کی تقسیم ہو تو کیا اولاد کو حصہ ملے گا یا ان کا حصہ ختم؟ ختم حصہ. اگر وہ تقسیم، یعنی ان ماں باپ اگر یعنی فوت نہیں ہوئے تھے، وہ پہلے فوت ہو گئی، تو پھر ان کا حصہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ اولاد کو حصہ ملتا ہے، پوتے پوتی کو نہیں. قرآن، سبحان اللہ، قرآن مومن کی آہستہ آہستہ ذہنی تربیت کرتا ہے. بالکل صحیح. There was a fire today at a Tawheed Muslim Cultural Center in Jersey City. May Allah help them cope up with the loss. Ameen ya Rabbal Alameen. Allah tamam masajid ko mehfooz rakhe aur tamam namaziyon ko mehfooz rakhe aur jo jo wahan pe tha. اللہ نے مرد کے مال میں جو شیئر فکس کر دیا ہے وراثت کے لیے، یا یہی احکام عورت کے مال کے لیے بھی ہیں؟ یہی عورت کے مال کے لیے بھی ہیں. اچھا آپ فون والے لوگوں کا بھی حق ہے، بےچارے پچھلی دفعہ بھی نہیں بولے تھے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
کلاس ماشاءاللہ بہت پیاری تھی، آہستہ آہستہ زندگی کا گر ہاتھ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی سب خوشی کا بول فرمائے اور اس کا اجر آپ کو عطا کرے دنیا اور آخرت میں دونوں میں. تھوڑا سا وراثت کے بارے میں میرا ایک سوال تھا کہ اگر زمین و جائیدادوں کے معاملات ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ بیٹوں کو کہیں جانا ہے کرنا ہے، تو باپ اگر اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کر دیتے اور بیٹیاں اس پہ اپنے رضا سے اجازت دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بھائیوں کے نام کر دیں، بھائی پیچھے پورا خیال رکھتے ہیں بہنوں کا کہ ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں یا مالی مدد کرتے ہیں، تو کیا پھر بھی اس باپ پہ وراثت کا صحیح وہ بیٹیوں کو نام اتنی نہیں کی یا کچھ بھی، تو اس کا کوئی گناہ ہے؟
اچھا آپ نے سوال اچھا پریکٹیکل سوال کیا جو آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا سوال. یہاں پہ دیکھیں جہاں تک وراثت کا تعلق ہے نا، اس میں یہ احکامات ہیں کہ وراثت کے اندر اس طرح سے بیٹیوں کا اتنا حصہ بیٹوں کا اتنا حصہ اور اس طرح سے دیا جائے. جب باپ اپنی زندگی میں دے رہا ہے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے جو اولاد ہے اس میں انصاف کرنے کا حکم ہے کہ اولاد میں ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ میں انشاءاللہ تعالی آگے اور وراثت کی باتیں آئیں گی تو اور آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بلایا تھا اور اس نے کہا تھا میں اپنے ایک بچے کو کوئی یہ چیز دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے دوسرے بچے کو بھی دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا، یعنی یہ پھر ایک ظلم ہو گیا نا، ایک بچے کو دی نہیں ہے دوسرے کو دے دی. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھائی جو ہے نا وہ بہنوں کا خیال رکھتے ہیں پورا پورا اور وہ کرتے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ماں باپ کو بھی یہ چیز کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ بچیوں کو بھی اسی طرح پھر ایکولی دیا جائے جیسے کہ بیٹوں کو دیا جاتا ہے اگر زندگی میں دے رہے ہیں. اگر ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تو جیسے وراثت کے حصے ہیں ویسے ہی تقسیم ہوں گے زندگی میں. ہاں بس یہ
میں بیٹوں کو یا دوسرے بچوں کے نام کسی کے لگوا چکے ہیں پھر اس میں بھی وراثت کا حصہ ہوتا ہے یا
نہیں؟ اب جو پراپرٹی لگوا چکے ہیں کسی کے نام اب تو وہ اس کے نام ہو گئی، اب تو نہیں اس میں سے باپ اپنی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ بھی باپ کی وراثت میں ہی شامل ہو گئی کہ باپ اگر فوت ہوتا ہے تو یہ بھی تقسیم ہوگی، نہیں وہ تو وہ لگا چکے ہیں نا کسی کو دے چکے ہیں، تو اپنی زندگی میں کسی کو کسی ادارے کو دے دیا کہیں دے دیا، یا اپنی زندگی میں انسان اگر ایسا نہیں کہ بالکل ایگزیکٹ اگر 10 روپے اس کو دیے تو 10 روپے اس کو ہی دینے ہیں، لیکن کم از کم تھوڑا بہت بچوں کے اندر اگر اس کو کچھ دیا تو چلو اس کا بھی کچھ دل خوش کر دیا. کیونکہ کیا ہوتا یہ ہے اس سے کہ آپس کے اندر رنجشیں ہوتی ہیں، حسد ہوتے ہیں، اس نے اتنا کھا لیا اس نے اتنا کر لیا، تو اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اس لیے ہے کہ اولاد کے اندر انسان انصاف کرے اور ان کو ایک کی طرف جھکاؤ نہ کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی تو میرا ایک کوشچن تھا کہ جیسے ایک عورت ڈیورس ہو جاتی ہے اور اس میں سے اس کی ایک اولاد ہے بیٹی ہے، اور جب وہ نکاح کر لیتی ہے دوسری شادی کر لیتی ہے تو جو اس کا شوہر ہے وہ ہسبینڈ صاحب حیثیت ہے، تو جیسے وہ اپنے دوسرے بچوں کو حصہ دے گا تو کیا وہ جو اپنی کی پہلی بچی
نہیں اس کو نہیں دے گا، کیونکہ وہ اس کو کہ اپنے بایولوجیکل فادر سے ملے گا اس بچی کو. دیکھیں ڈائیورس تو ماں نے لی ہے نا، بچی تو نہیں نا باپ سے الگ ہو گئی، وہ تو خون اس کا تو وہی ہے جو اس کے باپ کا ہے، اس کو اس کی وراثت سے نہیں ملے گا، یہ اپنے وصیت میں سے. فوت ہو چکا تو فوت ہوتے ہی تو وراثت ہوتی ہے نا، جب وہ فوت ہوئے تھے جب اس کے فادر بایولوجیکل فادر اس کے فوت ہوئے تھے تو ان کی جو بھی انہوں نے چھوڑا تھا اس میں سے اس بچی کو ملے گا حصہ.
اچھا لیکن اگر دوسرا جو ہسبینڈ ہے اگر وہ دینا چاہے مطلب
تو وہ وصیت میں سے وصیت کر سکتا ہے، لیکن وراثت میں تو اس بچی کا حصہ نہیں بنتا.
شکریہ
بہت، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لگتا ہے آج فون والوں کے بھی کافی سوال ہیں. جی
زندگی میں اگر انسان نے بچوں کو کچھ دینا ہو تو اس کو برابر دینا ہوگا.
جی
اگر ایک بچی دست ہو تو کیا اس کو اتنے جو ہے تھوڑا زیادہ دیا جا سکتا ہے؟
بس انصاف کی کوشش کرنی چاہیے، ماں باپ اپنی طرف سے تو چاہتے ہیں کہ ایک بچہ تھوڑا تنگ دست ہے یا اس کو کچھ ضرورت ہے تو اس کی کریں، لیکن پھر ایسے بھی نہیں کہ ایک ہی طرف پورا جھکاؤ اپنا کر دیا جائے، دوسرے بچوں کو بھی مطلب کچھ نہ کچھ ان کی مرضی ہو، کچھ نہ کچھ ان کو بھی تھوڑا بہت کچھ کمپنسیٹ کیا جائے، बिल्कुल एक तरफ झुक जाना वो सही नहीं है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अभी ये वरासत के अहकामात खत्म नहीं हुए, अभी और आएंगे इंशाल्लाह। आप लोग अपने सवालात और भी लिख लीजिएगा, अभी तो ये टॉपिक भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत सारी बातें इसमें मुझे आपको बतानी थी। ठीक है जी, बताइए जी। जी
मेरा एक सवाल है नजिया साहबा,
जी जी
आई हैव अ क्वेश्चन।
जी जी
इफ वी वांट टू गिव इक्वल पोर्शंस टू आवर सन एंड डॉटर, आई नो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बाय अल्लाह ताला, डॉटर हैज टू गेट हाफ व्हाट द ब्रदर गेट्स, आई मीन द सिस्टर गेट्स हाफ ऑफ व्हाट द ब्रदर गेट्स, इफ यू टेक परमिशन फ्रॉम माय सन कैन वी अप्लाई दैट यू नो इक्वल पार्ट्स टू बोथ।
आप अपनी जिंदगी में देना चाहते हैं?
जी नहीं, और वी वांट टू राइट इट डाउन इन आवर विल।
नहीं, आप ये नहीं कर सकते, इसलिए कि मैंने आपको अभी बताया कि जो भी विल आप लिखते हैं वारिस के हक में, तो विल लिख ही नहीं सकते, अल्लाह ताला ने उसके पोर्शंस तो खुद ही कर दिए हैं ना, तो आप वारिस के लिए तो विल लिखेंगे ही नहीं। जो वसीयत है, जो विल है आपकी, वो नॉन वारिस के लिए है। मसलन आपकी कोई भाभी है, बेचारी बेवा हो गई, वो बच्चों के साथ कैसे आपने कहा चलो उनके लिए लिख देते हैं, आपके कोई और रिश्तेदार हैं वो आप वारिस नहीं है, अब आपको जिंदगी में भी उनकी हेल्प करते रहते हैं, अब आप चाहते हैं कि पीछे से, तो आप वसीयत लिख सकते हैं। अपने जो वारिस हैं उनको तो ऑलरेडी हिस्सा मिल, अगर आप चाहती हैं मसलन है कि इनको ही ज्यादा हिस्सा मिल जाए, तो आप किसी और को वसीयत करें ही ना, बस विरासत इनके लिए ही छोड़ जाए। लेकिन जो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है, वो आपका बेटा उसको रूल आउट नहीं कर सकता कि उसको कैंसिल करके और वो कहे कि हाँ मेरी इजाजत से कर दो। उसकी इजाजत चाहिए ना, उसकी ना इजाजत चाहिए, मतलब उसके येस और नो नहीं चाहिए इसमें। जो अल्लाह का हुक्म है वो हिस्से हो चुके हैं, अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि किसको कितना मिलना चाहिए। तो अब आप अपनी बेटी को जिंदगी में दे रही हैं वो दे सकती हैं, लेकिन विरासत के अंदर फिर नहीं आप चेंजेस कर सकते। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम।
मैं चाह रही थी कि जैसे नॉर्थ अमेरिका में हस्बैंड वाइफ के लिए जो रूल्स हैं, अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो वहां तो कोई इस्लामिक विल उसकी नहीं चलेगी। और
जी इसका भी मैं आपको बताऊं, आप अपनी विल यहाँ पे इन मुल्कों में रहते हुए आप विल ये लिखें कि मेरी जितनी भी जो चीजें हैं, बिलोंगिंग्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया लॉ डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, बस दैट्स। जी 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 बिल्कुल
करना चाहिए अपनी जिंदगी में,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
हेलो,
अगर आप लोग अपने नाम भी पहले बोल दिया करें तो हमें जरा थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि कौन सवाल कर रहा है। जी
सारा सीमा खान बात कर रही हूँ। मेरा
जी
एक सवाल था कि आपने अभी ये माशाल्लाह सारा मिरास का बता रहे हैं और आगे भी हम इंशाल्लाह सूरह निसा में पढ़ेंगे, तो इसमें फिर ताजा एक जहन में चीज आती है जो वालदैन हम हमेशा देखते आते थे कि लोग लिख देते थे अखबार में कि हमने अपने बच्चे को जायदाद से आंख
हाँ,
दिया।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंख कर ही नहीं सकते, पेरेंट्स के पास भी ये राइट नहीं है कि वो आंख करें किसी भी बच्चे को, चाहे वो कितना ही नाफरमान है, उसने क्या ही बदतमीजियां की हैं, वो मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी। जो विरासत के राइट्स अल्लाह ताला ने जो विरासत का हक रख दिया है, वो कोई पेरेंट्स के पास ये राइट है ही नहीं कि वो अखबार में इश्तिहार देख के सोचें कि हमने इसको आग कर दिया तो अब खत्म हो गया मामला, वो अल्लाह ताला ने हिस्से लिख दिए हैं। ये बात अगर आपको एक दफा आप सब समझ लेंगे ना ये बात, तो फिर कोई भी क्वेश्चन जेन में आएगा ही नहीं कि बस अल्लाह ताला ने, अब ये इसके अंदर ना कोई आगे ना पीछे कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है, वो अल्लाह ताला ने लिख दिए हैं।
फिर तो
गुनाह
के
काबिल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है,
अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन चाहिए मुझे, जरा याद
जी।
गया, मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड अगर कर रही हूँ तो
जी,
मुझे पूछना ये है कि विरासत जो है वसीयत करना जरूरी नहीं है?
नहीं नहीं
अच्छा
जी।
दूसरा ये कि अगर पेरेंट्स अपनी जिंदगी में जितनी भी जायदाद है वालिद वो बांटते हैं तो वो बराबर बराबर दे सकते हैं?
हाँ
के बाद शरीयत के हिसाब से सकते हैं।
हाँ, अगर वो विरासत बन गई, विरासत तो मैंने आपको बताया ना मरने के बाद है, तो वो तो हिस्से अल्लाह ताला ने खुद मुकरर कर दिए हैं, अगर जिंदगी में देना चाहें तो सबको बराबर दें फिर।
अच्छा,
वालेकुम
मैं हमारा डार बोल रही हूँ, आपके लिए आपसे दुआ की करनी थी दरअसल।
जी जी,
निशान अहमद है, 22 ईयर्स ओल्ड, जस्सी सिटी मेडिकल सेंटर में, काफी उनकी तबीयत खराब है, कैंसर की स्टेज है, काफी ज्यादा तकलीफ में,
اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ زندگی دے، اتنی جوان ظاہر ہے لڑکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جلد صحت یاب کریں. جی بھائی آپ کو جی، بس اور تو کوشچن نہیں ہے، چلیں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی میرا کوشچن حدیث کے پروگرام سے متعلق ہے، پچھلی دفعہ جو آپ نے کیا تھا.
جی انشاءاللہ تعالی، اگر آپ کا وہی سوال ہے جو ابو ایوب انصاری والی حدیث کا تھا. اچھا میں نے وہ آپ کا سوال پہنچا دیا آگے استاذ ابو سیف تک، تو انشاءاللہ تعالی وہ خود ہی آپ کو جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟
میں امید رکھوں کہ وہ
جی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، جی انشاءاللہ تعالی
انشاءاللہ.
السلام علیکم. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کے کہے بغیر ہی میں سب اسٹوڈینٹس کے لیے دعا کرتی ہوں، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.